दिन भर 11 सितंबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे हमलों को जातीय नरसंहार बताया।
सिचुएशन रिमेन्स और सीम्स ए टेक्स्टबुक एग्जांपल ऑफ एथनिक क्लेंजिंग।
रियान स्कूल हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और CBSE को नोटिस जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में संबंधित पार्टियों को, सभी पार्टियों को कहा है जवाब देने के लिए। सारी पार्टियां जवाब देंगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक व्यू लेगी इसके ऊपर।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, आदर्श राठौर से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के प्रमुख ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाकर की जा रही कार्रवाई जातीय नरसंहार का एक सटीक उदाहरण है। संस्था प्रमुख जईद राद अल हुसैन ने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल को बताया कि असल हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं को इलाके में जाने से रोका जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश में अधिकारियों ने सूचना दी है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना मंगलवार को रोहिंग्या मुसलमानों के एक रिफ्यूजी कैंप का दौरा करेंगी। अमेरिका में प्रशासन ने चक्रवाती तूफान इरमा से हुए नुकसान का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। ये तूफान कमजोर तो हुआ है, मगर अभी भी मध्य फ्लोरिडा पर मंडरा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक इरमा और पिछले महीने टेक्सास में आए हार्वी तूफान से मची तबाही को मिला दिया जाए तो करीब $300 अरब का नुकसान हुआ है। ये रकम अमेरिका के सालाना GDP की करीब 1.5% है। उत्तर मायामी बीच के पुलिस अफसर मेजर रिचर्ड ट्रेंड ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं जनजीवन को सामान्य करने में जुटी हुई हैं।
The majority of our city is without power. We're getting some emergency calls where transformers.
शहर के ज्यादातर हिस्सों में बिजली नहीं है। हमें कई जगहों से फोन आ रहे हैं कि ट्रांसफार्मर और तारों की वजह से पेड़ों में आग लग रही है। कई जगहों पर लोगों की घरों की छतें भी उड़ गई हैं। हम हर जगह जाकर तूफान की चपेट में आए लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाए। ये थे मायामी के पुलिस ऑफिसर रिचर्ड रैंड के शब्द। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की 125वीं वर्षगांठ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर युवाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा से लेकर दलित उत्पीड़न जैसे विषयों पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान पर अपनी बात रखते हुए पूछा कि क्या आज नौजवान नारी का सम्मान करते हैं। यूक्रेन ने जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखेल साकाश्वली के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। साकाश्वली अपने समर्थकों के साथ सीमा पर बनी चौकी से पोलैंड से यूक्रेन में दाखिल हो गए थे। उन्हें 2015 में यूक्रेन की नागरिकता मिली थी, मगर जुलाई में उनसे इसे वापस ले लिया गया था। इस बीच साकाश्वली ने कहा कि वो अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। प्रशासन कुछ भी गलत कर सकता है, वो कुछ भी कर लें, मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही आत्मसमर्पण करूंगा। आखिर तक मैं लड़ाई जारी रखूंगा। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये थे जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखेल साकाश्वली के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मिस्र में सुरक्षा बलों के काफिले में हुए हमले में 9 पुलिस वालों के मारे जाने की खबर है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि सिनाई प्रायद्वीप में काफिले के रास्ते में पहले बमों से धमाके किए गए और फिर हथियारबंद हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तुर्की के मुख्य विपक्षी अखबार जमहूरियत के 20 पत्रकारों और कर्मचारियों पर मुकदमा फिर से शुरू हो गया है। इन सभी पर आतंकवाद और पिछले साल हुई तख्ता पलट की कोशिश करने वाले संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगा है। पत्रकार अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को गलत बताते हैं। ये सभी पिछले 10 महीनों से जेल में बंद हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम के संगठन ने मांग की है कि इन पत्रकारों को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। क्रीमिया में एक रूसी कोर्ट ने एक तातार नेता को 8 साल की सजा सुनाई है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख सीद राद अल हुसैन ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे संगठित हमले को जातीय नरसंहार की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि हालात का सटीक जायजा इसलिए नहीं लिया जा सका क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं को उस इलाके में घुसने नहीं दिया गया। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी ने यह रिपोर्ट भेजी है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के प्रमुख जायद राद अल हुसैन ने जिनीवा में बोलते हुए कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई जातीय नरसंहार का एक सटीक उदाहरण है।
The situation remains or seems a textbook example of ethnic cleansing. The Myanmar government should stop pretending that the Rohingyas are setting fire to their own homes and laying waste to their own villages.
Zayed Rad Al Hussain keh rahe the ki Myanmar mein jo halaat hain usse to yahi aabhas hota hai ki wahan Rohingya musalmanon ke khilaf nasliya safai ho rahi hai. Myanmar ki sarkar ko ye bahana banana band karna chahiye ki Rohingya khud apne gharon ko aag laga rahe hain. संयुक्त राष्ट्र अधिकारी जायद राद अल हुसैन ने म्यांमार से रखाइन प्रांत में क्रूर सैन्य कार्रवाई को खत्म करने की अपील की है, लेकिन म्यांमार के नेता ओंग सान सू ची इस बात से इंकार करती हैं कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सूची ने कहा,
I don't think there's ethnic cleansing going on. I think ethnic cleansing is too strong an expression to use for what's happening. I think there's a lot of hostility there.
मैं नहीं समझती कि नस्लीय सफाई की जा रही है। वहाँ जो हो रहा है उसको नस्लीय सफाई कहना तो बहुत ही कठोर विवरण है। मुझे लगता है वहाँ एक दूसरे के प्रति दुश्मनी बहुत है। सूची के शब्द, म्यांमार की सेना का कहना है कि उसकी कार्रवाई केवल रोहिंग्या चरमपंथियों के खिलाफ है और आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा। म्यांमार की सेना रोहिंग्या चरमपंथियों पर बारूदी सुरंगें बिछाने और 3 पुलों को उड़ा देने के आरोप भी लगा चुकी है। अगस्त महीने की 25 तारीख को रखाइन के उत्तरी इलाके में रोहिंग्या चरमपंथियों ने पुलिस चौकियों को निशाना बनाया जिसमें 12 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इस हमले के बाद से वहां हिंसा में तेजी आ गई है और अब तक 3,00,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की ओर पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा 10,000 रोहिंग्या लोग राखीने इलाके के अंदर ही विस्थापित हो चुके हैं जहां वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और उन्हें खाने और पीने की भी मुश्किलें हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब कुछ खबरें भारत से। गुड़गांव के रियान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में अपने बेटे की क्रूर हत्या की जांच सीबीआई से कराने की पिता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई से जवाब मांगा है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा है कि ये याचिका सिर्फ संबंधित स्कूल तक सीमित नहीं है बल्कि इसका देशव्यापी असर होगा। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ रायन स्कूल में बच्चे के मर्डर के केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार, सीबीएसई और दूसरे संबंधित लोगों को मामले में नोटिस जारी किया है। सुनवाई के बाद वकील सुशील ठेकरीवाल ने कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में संबंधित पार्टियों को, सभी पार्टियों को कहा है जवाब देने के लिए। सारी पार्टियां जवाब देंगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक व्यू लेगी इसके ऊपर।
ठेकरीवाल बच्चे के पिता वरुण चंद्र ठाकुर के पिता हैं। वरुण के 7 साल के बेटे की मौत पिछले हफ्ते दिल्ली से सटे शहर गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में हो गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो बच्चों को ले जाने वाली बस में कंडक्टर का काम करता था। इस तरह के इल्जाम है कि कंडक्टर ने बच्चे के साथ स्कूल टॉयलेट में यौन शोषण की कोशिश की और बच्चे के मना करने के बाद उसकी छुरी से हत्या कर दी। सुशील ठेकरीवाल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोई ऐसी व्यवस्था कायम हो जिसमें इस तरह के मामलों में जवाबदेही तय हो सके।
हमने ये प्रेयर किया है कि एक तो गाइडलाइंस हो, सुप्रीम कोर्ट इस पर दिशा निर्देश जारी करे, तय करे, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए आयोग या ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए ताकि इमीडिएट लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाए। और 3, इस पूरे प्रकरण की एक सीबीआई जांच हो, एक निष्पक्ष जांच हो। इन प्रार्थनाओं को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट गए थे।
मर्डर के बाद रान स्कूल के गुरुग्राम शाखाओं को बंद कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें आज सोहना की एक अदालत ने 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। स्कूल की प्रिंसिपल से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की एक टीम रैन ग्रुप के सीईओ और दूसरे लोगों से पूछताछ के लिए मुंबई भी गई है। हरियाणा राज्य के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पहले कहा था कि स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल मालिकों के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद मर्डर किए गए छात्र के पिता से बात की। ये सवाल पूछे जाने पर वरुण चंद्र ठाकुर ने कहा,
उनसे भी पूरे सहयोग की वो है, उनसे भी पॉजिटिव ही अप्रोच मिला था, वो भी इस घटना को लेकर उतने ही संजीदा है।
इस बीच गुरुग्राम प्रशासन के जरिए बनाई गई एक टीम ने डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात की गई है। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्कूल में बाहर के स्टाफ जैसे कंडक्टर और ड्राइवर वगैरह के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी जो वो बच्चों के सेक्शन में घुस पाया। साथ ही कहा जा रहा है कि प्रांगण में लगे कई CCTV कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में कश्मीर घाटी में शांति बहाली के प्रयासों का असर सतह पर दिखाई देने लगा है। जम्मू कश्मीर की 4 दिवसीय यात्रा पर आए राजनाथ सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य के हालात में काफ़ी सुधार हुआ है और वो कश्मीर समस्या के पुराने विवादित पहलुओं के समाधान के लिए किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि वो हर कश्मीरी के चेहरे पर मुस्कराहट देखना चाहते हैं। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
श्रीनगर में सोमवार को प्रेस सम्मेलन से संबोधित करते हुए भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अगर जम्मू कश्मीर की जनता की शांति और खुशहाली के लिए उन्हें एक साल के भीतर 50 बार भी जम्मू कश्मीर आना पड़ेगा तो वो आने के लिए तैयार हैं।
मैं जम्मू कश्मीर की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं अपनी तरफ से, 5 बार क्या, एक साल में 50 बार आने की जरूरत होगी तो मैं जम्मू कश्मीर आऊंगा और जम्मू कश्मीर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए जो भी मुझे इफर्ट्स करने होंगे वह करूंगा।
गृह मंत्री ने यह भी बताया कि हर कश्मीरी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखना चाहते हैं।
हम कश्मीर के हर युवक और युवती के चेहरे पर हम हंसी देखना चाहते हैं, मुस्कान देखना चाहते हैं, खुशहाली देखना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वो उसी भाषण को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं।
और हमारी इस यात्रा का उद्देश्य यह भी है कि 15 अगस्त को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी ने अपने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए यही कहा था कि कश्मीर की समस्या का समाधान न गाली से होगा न गोली से होगा, कश्मीर के लोगों को गले लगाकर होगा।
गृह मंत्री ने कहा कि बीते 2 दिनों में कश्मीर में वो 55 प्रतिनिधि मंडलों से मिल चुके हैं जिनमें राज्य के बड़े बड़े राजनीतिक दल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ के हर किसी स्टेक होल्डर से खुले दिल के साथ मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कश्मीर के हालात पूरी तरह से ठीक होने का मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। धारा 35 के हवाले से पत्रकारों के एक सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है जिससे कश्मीरियों की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए।
और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, केवल 35A की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो कुछ भी हम करेंगे हमारी सरकार करेगी, हम यहां के लोगों की भावनाओं के जज्बात के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे।
गृह मंत्री ने यह भी प्रेस सम्मेलन में बताया कि हमने बार बार जिस कश्मीर समस्या के परमानेंट सलूशन यानी हमेशा के लिए हल की बात कही थी वो परमानेंट सलूशन 5 बातों पर आधारित है। उन्होंने कहा,
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये परमानेंट सलूशन 5 C's पर आधारित है। फर्स्ट C कंपैशन, सेकंड C कम्युनिकेशन, थर्ड C कोएग्जिस्टेंस, फोर्थ C कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फिफ्थ C कंसिस्टेंसी।
राजनाथ सिंह एक ऐसे समय में कश्मीर के दौरे पर हैं जब कश्मीर में बीते एक साल से हालात अशांत हैं। इस बीच आज दक्षिणी कश्मीर के जिला कुलगाम के खुड़बुनी इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 चरमपंथियों को मार दिया है। मारे गए चरमपंथियों के जनाजों में हजारों लोग शामिल हो गए। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान को लेकर राज्य में जहां राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के दावे पर विपक्षी दल सवाल उठाने लगे हैं। मौर्य ने एक कार्यक्रम में कहा था कि दाल में नमक के बराबर खाना बर्दाश्त किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पूरे ब्यौरे के साथ हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
हरदोई की एक जनसभा में केशव मौर्य वैसे तो भ्रष्टाचार करने वालों को धमकी दे रहे थे, लेकिन विरोधी दल इसका अर्थ वही निकाल रहे हैं जो वो बोल रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को ये सीख दे रहे थे कि दाल में नमक के बराबर ही खाओ, उससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है कि दाल में नमक का पैमाना क्या है। पार्टी प्रवक्ता वीरेंद्र मदान कहते हैं,
खुलेआम ऐसा ऐलान करके इंजीनियर्स के लिए कहना कि आप कमीशन लो लेकिन नमक के बराबर लो, नमक के बराबर का पैमाना क्या है? ये सीधे सीधे एक हिंट है उनके इंजीनियर से कि तुम भ्रष्टाचार करो लेकिन हमसे मिलते रहो, हमारा हिस्सा हमको पहुंचाते रहो, अपना भ्रष्टाचार करते रहो, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे, बाहर में जाए इस उत्तर प्रदेश की आवाम जिसने हमको सत्ता सौंपी है, लेकिन इस सबसे जब तक सौंप दी है तो 5 साल हमको सरकार चलानी है, 5 साल तुम भी कमाओ और हमको भी पैसा देते रहो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहो।
केशव मौर्य एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जिस विभाग के वो मंत्री हैं यानी PWD में, तमाम खामियों को ये बताते हुए गिना रहे थे कि पिछली सरकार में ये सब जरूर हुए हैं लेकिन अब नहीं होंगे। इससे पहले उन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों को तमाम तरह की चेतावनी दी और कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन अंत तक आते आते वो चेतावनी की बजाय दाल में नमक के बराबर जैसी सलाह दे बैठे। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। कांग्रेस प्रवक्ता की तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी इस बारे में यही राय है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव केशव मौर्य के बयान पर कुछ इस तरह सफाई देते हैं।
उन्होंने ठेकेदारों के लिए बात कही है, कोई भी ठेकेदार जो भी कंस्ट्रक्शन के कामों में जो लोग भी लगे हुए हैं, अब कुछ तो उनका हेतु आर्थिक लाभ होता है, तो जिस तरह से निर्माण कार्यों में कमियों की बातें आती हैं, घपले घोटाले की बातें आती हैं, उसपे उनका ये जो इसका जो सीधा सा अर्थ है कि भाई उन्होंने एक कॉन्ट्रेक्टर्स को ये हिदायत दी है कोई ज्यादा नहीं ये होना चाहिए, तो ये तो उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ये बात कही।
बहरहाल बीजेपी प्रवक्ता कुछ भी कहें लेकिन उप मुख्यमंत्री मौर्य ने दाल में नमक के बराबर खाने की बात तो कही ही है। जानकारों का कहना है कि परिप्रेक्ष्य कुछ भी रहा हो, न खाऊंगा और न खाने दूंगा जैसे नारे से तो ये बयान बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। हैदराबाद के एक स्कूल में 11 साल की लड़की को सिर्फ इसलिए लड़कों के टॉयलेट में खड़ा रखा गया क्योंकि वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आई थी। ये घटना इसके बावजूद हुई कि लड़की के अभिभावकों ने स्कूल को पहले से सूचित कर दिया था कि लड़की को उस दिन यूनिफॉर्म पहनने से छूट दी जाए। इसका असर ये हुआ है कि लड़की डिप्रेशन में चली गई है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये एक 5वीं क्लास की बच्ची की कहानी है जो इतनी आघात हो गई है कि वो स्कूल को जाने से भी डर रही है। बच्ची की माँ ने स्कूल की डायरी में लिखा था कि वो यूनिफॉर्म नहीं पहनी है क्योंकि उसका यूनिफॉर्म तैयार नहीं था। बच्ची अपनी क्लास टीचर को दिखाती है और वो टीचर उसको क्लास में बैठने की इजाज़त देती है। फिर 4वीं अवधि में बच्ची वॉशरूम जाकर वापस आते वक्त फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर उससे सवाल पूछती है। सुनिए बच्ची अपने पिता से क्या कहा। हम अपनी क्लास को वापस आ रहे थे जब फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर हमें रोका और कहा कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहने हो। हमने बताया कि हमारी माँ ने यूनिफॉर्म धोने के लिए दिया था और वो तैयार नहीं था। उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे लड़कों के वॉशरूम में खड़ा कर दिया। 4वीं क्लास के बच्चे मुझे देख कर हंस रहे थे। बाद में उन्होंने मुझे हमारी कक्षा में ले गए और सारे क्लास के सामने मुझे अपमानित किया। अब से मुझे स्कूल नहीं जाना है। ये थे बच्ची के शब्द। घर पहुंचते ही क्या हुआ बताते हैं उसके पिता रामकृष्ण अमृतसेट्टी।
हाँ, घर को अंदर आते आते ही वो शी ब्रोक इन टू टीयर्स, क्राइड लाउडली। तो ऐसा आके बोल रहे, मैं ऐसा बैठा हूँ सोफा में, उसका रोना देख के मैं ऐसा उठ के, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे, बोल के मैं उसको पकड़ा। तो वो बोल रहे पापा ऐसा हुआ बोल के। मैं लिख दिया ना, तू क्यों उसको नहीं दिखाया डायरी को, बोला मैं।
तो स्कूल क्या कहती है इस इल्जाम पर जो बच्चों के संरक्षण सेल पहुंच गया है? स्कूल के प्रिंसिपल नविया ने कहा,
एक्चुअली एज ऑफ लाइक वी आरपी लाइक
हमारे पीई ट्रेनर का कहना है कि वो सिर्फ बच्ची से पूछताछ कर रही थी, लेकिन बच्ची को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, तो इस मामले को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच समुदाय की मांग की वजह से पीई ट्रेनर को निलंबित कर दिया गया है। ये थे नविया के शब्द। रामकृष्णा ने बच्ची को बहुत कुछ समझाकर आज स्कूल ले गए क्योंकि उसका आज परीक्षा था, लेकिन बच्ची लगातार अपने माँ से ये बोल रही है कि वो स्कूल नहीं जाएगी और घर का कामकाज संभालेगी। रामकृष्णा ने बच्ची को इस परिस्थिति में देखकर ही बलाला हक्कलू संगम या बाल अधिकारियों का संगठन के पास अपनी शिकायत ले गए। बलाला हक्कलू संगम के अछूत राव ने कहा,
तेलंगाना में रिपोर्टिंग तो हर रोज 3 या 4 रिपोर्ट हो रहा है। हमारा बालाला हक्कुल संगम को तो हमारा एक चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन है। एक चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन तो 1 वीक में 15 to 20 केसेस हमारे पास आ रहे हैं। जो जैसा कॉर्पोरल पनिशमेंट है, बच्चों को सता रहा है, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, फीस नहीं बना बोलते स्कूल से निकाल दे रहा है।
अच्युत राव एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि बहुत सारे शिक्षकों को बच्चों को किस तरह संभालना नहीं आता है। जाहिर है कि जब शिक्षकों की ठीक तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है तो इस तरह के जख्म बच्चों के दिमाग पर लगते ही रहेंगे। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं वंदना और राजेश जोशी।
आपकी राय, नमस्कार। स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ हैं
वंदना।
वंदना हैं बिल्कुल इस बार भी, इस हफ्ते भी, और उनके हाथ में है पीला पोस्ट कार्ड।
जी बिल्कुल, और पोस्ट कार्ड से ही शुरू करेंगे।
आप शुरू करें इससे पहले मुझे याद आ गया कि एक मेरे नाम पे चिट्ठी आई हुई है।
चलिए वहाँ तो से शुरू करना चाहते हैं।
जी हाँ, एक श्रोता ने मेरी आलोचना सीधे सीधे की है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि उसको मैं पढ़ लूं और फिर उसके बाद आप बाकी चिट्ठियां पढ़ें। बहुत लंबी चिट्ठी लिखी है अशोक पांडे ने। इनका कहना है कि 7 सितंबर 2017 के दिन भर कार्यक्रम में 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों पर मुंबई की टाडा कोर्ट के फैसले पर BBC की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए राजेश जोशी ने बताया कि कैसे अबू सालिम गरीब परिवार से संबंध रखते थे। इन्होंने आगे कहा है कि उनकी बूढ़ी माँ के विषय में राजेश जोशी को सूती साड़ी, झोपड़ पट्टी, गर्मी, पंखा, गरीबी और अबू सलेम मेरे लिए मर गया का चित्र खींचते हुए बहुत बुरा लग रहा था, और ये बहुत बुरा इन्होंने एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। आगे इनका कहना है कि रिपोर्ट सुनाते वक्त लगा जैसे राजेश जोशी को अबू सलेम और उसकी माँ से हमदर्दी हो रही थी और वो किसी आतंकवादी की नहीं बल्कि किसी युवा बेरोजगार के संघर्ष की कहानी सुना रहे हों। तो अशोक पांडे जी, आपकी ये जो आलोचना है सिर माथे, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ ये कहना है कि अगर आपने ये पूरी बातचीत गौर से सुनी होती तो आपको ये मालूम होता कि मैंने क्यों ये बात कही है। ये उस दौर की बात थी जब अबू सालिम गुलशन कुमार हत्याकांड में उनका नाम आ रहा था और मैं उनके घर पे गया था उनकी माँ का हाल जानने के लिए कि आखिर एक ऐसे शार्प शूटर की माँ किस हाल में रह रही है, जिस शार्प शूटर के बारे में ये कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए काम करते हैं, उस माँ का हाल मैंने कहा कि उन्होंने कहा था कि अबू सालिम मेरे लिए मर चुका है, ये कहा था। तो आप समझ गए होंगे कि ये न तो किसी, जो आपने लिखा है, आतंकवादी के प्रति हमदर्दी हो रही है। हाँ, उसकी माँ के प्रति हमदर्दी तो पूरे गांव वालों की थी, सबको थी। एक ऐसा बेटा जो खुद बंबई में जाके तमाम तरह की हरकतों में, अपराध में शामिल था, अब तो कन्विक्शन भी हो गया है, और माँ एकदम उनकी छूटी हुई थी
जी।
तो BBC में इस बातचीत को याद करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि उस दौर को याद किया जाए कि उनकी माँ किस हालत में रह रही थी।
संदर्भ बहुत अलग था,
संदर्भ बिल्कुल अलग था। अशोक पांडे जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा।
जी बिल्कुल।
अब जो चिट्ठी, जो पोस्ट कार्ड की बात हम कर रहे थे, वो आप कहिए।
जी बिल्कुल, ये पोस्ट कार्ड हमें भेजा है गांव गंगा टेहड़ी, जिला करनाल, हरियाणा से संजय कुमार साहब हैं। ये कहते हैं कि मैं प्रगतिशील किसान हूँ, 21 साल पुराना श्रोता हूँ, लेकिन जो चीनी रेडियो है वो भारी पड़ जाता है, कुछ करिए। और साथ ही कहा है कि आप लोगों से मिलने की बड़ी तमन्ना है, कभी हमें भी बुलाइए।
बिल्कुल, आपको बुलाया, आपके लिए तो दरवाजे, हमारे श्रोताओं के लिए तो BBC हिंदी के दरवाजे खुले ही हुए हैं। कभी आप आइए दिल्ली, जब भी आना हो हमारे दफ्तर आइए, स्टूडियो आइए, बहुत अच्छा लगेगा। प्रसारण में आपको थोड़ी सुनने में दिक्कत आती है, वो अलग अलग हिस्सों में कई बार ऐसा होता है। देश के कई हिस्सों में प्रसारण साफ सुनाई पड़ता है और कई हिस्सों में कई बार गड़बड़ होती है। जैसे आपने कहा कि चीनी रेडियो भारी पड़ता है, वो शॉर्टवेव,
ये शॉर्टवेव पर ही सुनते
जी हाँ, उस पर सुनते होंगे। तो कई बार चीनी रेडियो का जबरदस्त दबाव रहता है, कई बार जो है साफ सुनाई पड़ता है, जैसे पश्तो के, उर्दू के कार्यक्रम बहुत साफ सुनाई पड़ते हैं, लेकिन वो अलग अलग इलाकों की बात है। तो इसमें हम कितना इसको दुरुस्त कर सकते हैं, अभी मैं तकनीकी तौर पर आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये कोशिश तो हम कर ही सकते हैं
जी। और इनका एक अनुरोध है कि किसानों पर आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई विशेष श्रृंखला प्रसारित करें।
किसानों पर हम बीच बीच में करते रहते हैं, इंडिया बोल हमने कई बार किया है और रिपोर्टों की श्रृंखला भी हमने की है किसानों के बारे में, जब कभी कोई बातचीत होती है तो हम किसान या कृषि अर्थव्यवस्था पर,
लेकिन सुझाव वाजिब है, कोई लंबी श्रृंखला काफी समय से उस तरह से नहीं की
हमने। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। देवेंद्र शर्मा वगैरह को हम लोग बुलाते रहते हैं ताकि चीजें स्पष्ट हों
जी। अगर ईमेल ले लें तो ये सचिन जाधव हैं, इन्होंने ईमेल लिखा है कि बीबीसी हिंदू मुसलमान तनाव और पाकिस्तान के बारे में ज्यादा ही बात करता है। ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें हमें चाहिए, लेकिन भारत में भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं।
सुनील जाधव साहब, मैं आपको एक दावत देता हूँ, एक न्योता देता हूँ, आप किसी दिन एक पूरा दिन हमारे दफ्तर में आके गुजारिए, हमारे न्यूज रूम में, तब आपको पता चलेगा कि न्यूज हम कैसे, खबरें कैसे, उनको सेलेक्ट कैसे की जाती हैं। जो कुछ हो रहा होता है, ये मैं बार बार कहता हूं और मुझे लगता है कि ये अपने आप को दोहराना भी अजीब सा होता है, लेकिन हम उसको नकार नहीं सकते। अगर पाकिस्तान में कुछ हो रहा होगा या हिंदुस्तान में कुछ हो रहा होगा, हमारी जिम्मेदारी है कि वो चीज आपके सामने प्रस्तुत करें। लेकिन अगर आप हमें सुझाव दें कि आप इन विषयों पर और रिपोर्टें करवाएं या आप बातचीत सुनना चाहते हैं तो हम उस पर ध्यान देंगे
जी। तभी दिन भर कहा जाता है कि दिन भर की घटनाएं जो है,
घटनाएं जी हाँ, वो हम तो वही जिम्मेदारी है जी। लेकिन अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, अगली चिट्ठी आपके पास है, कई चिट्ठियां हैं, लेकिन मैं श्रोताओं से क्षमा मांगता हूँ और पता बताता हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब नजर डालते हैं आज की खेल गतिविधियों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। कराची पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फिर से शुरू करने की मुहिम के तहत विश्व एकादश की टीम मेजबानों के खिलाफ T20 श्रृंखला खेलने के लिए लाहौर पहुंच चुकी है। मार्च 2009 में श्रीलंकाई टीम पर हुए आतंकवादी हमले के बाद किसी टीम का ये आधिकारिक दौरा है। इस हमले के बाद कोई भी शीर्ष टेस्ट टीम सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान नहीं आई और ICC ने भी किसी भी मैच रेफरी और अंपायर को मई 2015 में लाहौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। और अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट की। दुनिया के नंबर दो टेस्ट गेंदबाज रविंद्र जडेजा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। इस पर उन्होंने पहले एक ट्वीट किया लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया। कहा यह जा रहा है कि इस सीरीज के लिए सिलेक्शन न होने के कारण वो बोर्ड से नाराज हैं। सीरीज में इनके अलावा स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को भी शामिल नहीं किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 17 सितंबर को खेला जाएगा। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन MSK प्रसाद ने टीम चयन पर कहा है कि बोर्ड की रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक पहले 3 वनडे के लिए टीम चुनी गई है और इसके तहत जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को आराम दिया गया है। खेल समाचारों में इतना ही।
और सभा के अंत में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के प्रमुख ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाकर की जा रही कार्रवाई जातीय नरसंहार का एक सटीक उदाहरण है। संस्था प्रमुख जईद राद अल हुसैन ने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल को बताया कि असल हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं को इलाके में जाने से रोका जा रहा है। अमरीका में प्रशासन ने चक्रवाती तूफान इरमा से हुए नुकसान का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। ये तूफान कमजोर तो हुआ है मगर अभी भी मध्य फ्लोरिडा पर मंडरा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक इरमा और पिछले महीने टेक्सास में आए हार्वी तूफान से मची तबाही को मिला दिया जाए तो करीब $300 अरब का नुकसान हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की 125वीं वर्षगांठ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और दलित उत्पीड़न जैसे विषयों पर तीखी टिप्पणी की। यूक्रेन ने जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखेल साकाश्वली के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। साकाश्वली अपने समर्थकों के साथ सीमा पर बनी चौकी से पोलैंड से यूक्रेन में दाखिल हो गए थे। उन्हें 2015 में यूक्रेन की नागरिकता मिली थी मगर जुलाई में उन्हें इससे वापस ले लिया गया था। मिस्र में सुरक्षा बलों के काफिले में हुए हमले में 9 पुलिस वालों के मारे जाने की खबर है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि सिनाई प्रायद्वीप के एक काफिले में रास्ते में पहले बमों से धमाके किए गए और फिर हथियारबंद हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया और रविशंकर कुमार। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।